करें शुरू जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है जी 14, उनवान है निस्बते इल्मिया। बराह रास्त इसको पढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इसमें 112 नंबर पे और फिर 117 नंबर पे, दो नक्शे दिए हुए, ठीक है जी। जरा इस दो नक्शों को देखें तो ये जो पेज नंबर 112 पे नक्शा दिया हुआ है इस पे टाइटल है कुर्बे नवाफिल और नीचे लिखा है निस्बते इल्मिया। अब आप इसके साथ देखें तो एक दायरा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अरफात, आगे ये जीम नहीं है, ये हज लिखा हुआ है, फिर उमरा, फिर तवाफ, फिर रमी, फिर कुर्बानी, ठीक है जी। इसके साथ एक बड़ा दायरा बना हुआ है जो असल में तीन दायरों को दिखा रहा है, साबिता, आयान और जवैया को। अब साबिता के आगे दो दायरे दिखाए गए हैं, यानी साबिता को देखें तो इसके दो दायरे दिखाए गए हैं, एक लतीफा अख्फा, एक सतह अंदर वाली सतह जो है, और फिर लतीफा खफी उसके बाहर वाली सतह। फिर आयान जो है ये साबिता के गिर्द है और इसकी भी दो सतहें हैं। अंदर की सतह को देखें तो लतीफा सिरी दिखाया है और फिर जो उसकी बाहर वाली सतह है वो लतीफा रूही है। और जो तीसरा दायरा है, जो बिल्कुल आखिर में जो दो दायरे बाहर हैं, एक दायरा जिसको लाइनों से क्रॉस किया गया उसको कहा गया है कि तखलीत, यानी नस्मा। यहां से तखलीत का अमल शुरू हो गया, यहां से नस्मा बन गया, और ये नस्मा जो है इससे बाहर की तरफ दो दायरे हैं, एक का नाम है लतीफा कल्बी और एक का नाम है लतीफा नफसी। अब ये सब कुछ आपकी नजर में आ रहा है। अब उसके बाद देखें कि ये नीचे लिखा है कि नमाज, रोजा, जक़ात, आखरत, नवाफिल, तिलावत, फिकर, जिक्र, इस्तकबाल, हज और हलक। हलक कहते हैं ये कुर्बानी अपना के बाद जो है वो अपना हाजी साहब जब अपना सर के बाल मूंढते हैं उसको हलक कहते हैं। रमी कहते हैं पत्थर मारने को। तवाफ आपको पता ही है कि खाना काबा के गिर्द होता है। अब ये कुर्बे नवाफिल के नीचे ये सारी बातें बताकर, तो असल में ये बात जहन में रखें कि ये सारी इबादात, नमाज, रोजा, जक़ात, आखरत के हवाले से जो भी हम अमाल करते हैं ये सब नवाफिल में आते हैं, और नवाफिल में तिलावत भी है, जिक्र, फिकर और इस्तकबाल और हज और फिर हलक। ये इस्तकबाल से मुराद जो है ये किसी चीज़ को वेलकम करना, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो शरीयत के काम हैं ये असल में कुर्बे नवाफिल कहलाते हैं और इन्हीं का नाम निस्बते इल्मिया है। अब इसको समझे निस्बते इल्मिया क्या है। देखें जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखला लेते हैं तो गोया आपकी एक शनाख्त उस यूनिवर्सिटी के हवाले से बनती है कि जी ये पंजाब यूनिवर्सिटी में के पढ़े हुए हैं, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं, ये लिंकन इन यूनिवर्सिटी के हैं, तो वो एक निस्बत होती है। तो कुछ किसी बात को हम इल्मी तौर पे जानते हैं तो इस इल्मी तौर पे जानना एक बात है और उसे अमली तौर पे जानना ये बिल्कुल एक दूसरी बात है। अब आ जाएं जरा पेज नंबर 117 पे, तो देखें इसमें भी दायरे दिखाए गए हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है, दोनों जगह एक ही दायरे हैं लेकिन सिर्फ दिखाने का अंदाज डिफरेंट है। एक कुर्बे नवाफिल के तहत है और इसी का नाम निस्बते इल्मिया दिया गया है, और दूसरे का उन्वान है कुर्बे फराइज और इसी को निस्बते जज्ब कहा गया। अब इसमें देखें तो छोटा सा एक दायरा बना हुआ है खाली सा, उसके आगे कुछ श्वाएं निकल रही हैं और वो श्वाएं आगे जो छह दायरे बने हुए हैं वो अब बाहर से अंदर की तरफ हैं, यानी के श्वाएं बैरूनी दायरे को दिखाए लेकिन ये सारे दायरों को फीड कर रही हैं, कहीं से आ रही हैं ये श्वाएं। और ये अब इनको दर्जा बंदी की गई है, साइड पे लिखा है नस्मा मुतलक, नस्मा मुफरद और नस्मा मुरक्कब। ये हमें पहले हमने पढ़ा कि ये नस्मा मुरक्कब जिस्म है, नस्मा मुफरद ज़हन है और नस्मा मुतलक रूह है। ये श्वाएं जो हैं ये इन दायरों को जरा गौर से देख लें कि बिल्कुल उसके सेंटर में जो दायरा है उसका नाम रखा है लतीफ़ा अख़फ़ा, और जो इस लतीफ़ा अख़फ़ा के गिर्द दायरा है, जो स्याह नुक्ते के गिर्द दायरा है उसका नाम लतीफ़ा ख़फ़ी है। फिर उससे बाहर का जो दायरा है वो लतीफ़ा सिर्री है, फिर उससे बाहर का जो दायरा है उसका नाम लतीफ़ा रूही है, उससे बाहर के दायरे का नाम लतीफ़ा कल्बी है और उससे बाहर के दायरे का नाम लतीफ़ा नफ्सी है। जब बंदा देखे यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि कैसे, लेकिन अगर नस्मा मुरक्कब से आप तरक्की करके नस्मा मुफरद और फिर नस्मा मुतलक तक पहुँच जाते हैं तो ये गोया नस्बत जज्ब हुई और ये कुर्बे फराइज हुए। अब इसको मजीद ज़रा एक सादा लफ्ज़ों में हजूर मुर्शिद करीम ने जितनी इसकी तशरीह अल्फाज में की है उससे कहीं ज़्यादा आसान अल्फाज में ये 112 पेज पे और 117 नंबर पेज पे ये दो नक्शों से कुर्बे फराइज और कुर्बे नवाफिल को वाजे कर दिया उन्होंने। तो मैं ये अर्ज करने लगा था कि ये निस्बत जज्ब यानी कुर्बे फराइज और कुर्बे नवाफिल को हम आसान आम दुनियावी जबान में मंडेन टर्मिनोलॉजी में कैसे समझ सकते हैं। अब कुर्बे नवाफिल फ़र्ज़ करें कि आप किसी दफ्तर में काम करना चाहते हैं, आप उसके मालिक के पास जाते हैं, मालिक आप में वो गुण देख लेता है और आपको अपॉइंट कर देता है, यानी वो आपको फराइज हवाले कर देता है कि भाई आपने ये काम करना है, आप आज से जनरल मैनेजर हैं या स्टोर कीपर हैं, जो भी वो फराइज मुनासिब समझता है वो आपके हवाले कर देता है। अब आप उन फराइज को अदा करने में इन्हमाक हासिल करते चले जाते हैं और मालिक के करीब होते चले जाते हैं, ठीक। अब दूसरा तरीका ये है कि हम जाते हैं किसी दफ्तर में, दाल नहीं गलती तो हम वहाँ पे बैठे रहते हैं, ख्वाहिश तो है कि हमें जॉब मिल जाए यहाँ। अब हम क्या करते हैं कि वो कुछ छोटा मोटा काम जो कि हमारे फराइज में नहीं है वो करना शुरू कर देते हैं। मसलन मैं जाके बैठा हूँ एक दफ्तर में, कहीं प्याली या चाय की आगे रख दी तो कहीं ज़रा डस्टर लेके तो उसको साफ़ कर दिया कि किसी तरह मैं नज़र में आ जाऊँ और ये मुझे टाइम दे दे या मुझे अपॉइंट कर ले। तो ये जो काम है जो मेरे फराइज नहीं हैं, अब मैं बैठा हूँ इसने आवाज़ लगाई कि भाई वो लड़के को, तो वो लड़के को मैं ज़रा जल्दी से बाहर होकर उस लड़के को कहता हूँ तुम इधर अंदर आओ, मालिक बुला रहा है तुम्हें। तो ये मैंने कुर्बे नवाफिल वाला काम किया, इसमें फालतू का काम है, ये कोई मेरा फ़र्ज नहीं था, लेकिन मैं मालिक के सामने अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में इस तरह के काम कर रहा हूँ। ये जो मैंने थोड़ा सा आपको एक मिसाल देकर कोशिश की कि आपको ये कुर्बे नवाफिल और कुर्बे फराइज ज़रा वाजे हो जाए, एक तो ये कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, अब जो कुछ भी आपकी ड्यूटीज हैं वो आप पे फर्ज हैं, और एक ये कि मैं वो जॉब लेने के लिए वहाँ पे बस लटक रहा हूँ, कभी इधर घूम रहा हूँ कभी उधर, कोई छोटा मोटा काम जो है वो फालतू में कर देता हूँ, वो उसका कोई मुआवजा भी नहीं है और उसकी कोई अहमियत भी नहीं है, लेकिन इस बहाने मैं वो छोटे मोटे काम करके तो खुद को आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कुर्बे नवाफिल। जब ये वहाँ पहली बार आया था तो मैं लगा था ये तशरीह करने, लेकिन फिर उससे वो सारा फ्लो टूट जाता। तो अब इसकी हम करते हैं, ये दो नक्शों को समझ लेने के बाद अब रीडिंग का आगाज करते हैं। निस्बत इल्मिया। अब ये तसव्वुफ और रूहानियत के बारे में आम तौर पर ये एतराज किया जाता है कि हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम ने रूहानी अलूम या तसव्वुफ की तदवीन नहीं की। ये रूहानियत और तसव्वुफ एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि भाई हजूर अलैहिस्सलाम के दौर में या सहाबा कराम के दौर में तो ये कोई रूहानी अलूम या तसव्वुफ के अलूम की कोई तदवीन या उसकी है, उसको मुदव्वन नहीं किया गया, इकट्ठा नहीं किया गया, उनको अरेंज नहीं किया गया। अब उसका जवाब भी सुन लीजिए और इससे आपका जहन इंशाल्लाह और वसी होगा। क्योंकि सहाबा कराम के ज़माने में रूहानी अलूम की तदवीन नहीं हुई और रूहानी अलूम के बारे में ऐसे मुशाहदात नहीं है जिनको सनद मानकर तसव्वुफ और रूहानियत को तस्लीम कर लिया जाए, ये उसी एतराज का हिस्सा है। बाज हजरात का ये ख्याल भी है कि ये पुराना इल्म है जो हिंदुइज्म से ताल्लक रखता है या उस इल्म का ताल्लक या इस इल्म का ताल्लक उन लोगों से है जो ईसाई यहूद और राहिब हैं, यानी ये मिस्टिसिज्म है, यानी रहबानियत से इसका ताल्लक है। ये पूरा वो एतराज देख लें उसकी कितने एंगल हैं। यानी उन्होंने दुनिया की दिलचस्पियां खत्म करके दुनिया के हंगामों से अपना रिश्ता मुनक़ते करके एक ऐसी राह इख्तियार की है जो अवामुन नास को दुनिया से दूर कर देती है। कायनात और कायनात के अंदर मौजूद रंगीनियां अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा नहीं की कि आदमी उनसे फरार इख्तियार करके बियाबान या किसी गोशे में बैठ जाए। तसव्वुफ के बारे में इस किस्म के एतराज, इस किस्म के एतराजात हमेशा उठते रहे हैं। ये तसव्वुफ, यहाँ पे अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा लफ्ज़ तसव्वुफ को वाजे कर दूँ। तसव्वुफ का ताल्लुक, इस लफ्ज़ का ताल्लुक ऊन से जोड़ा जाता है तो इसको सौफ कहा जाता है। कुछ लोग इसका ताल्लुक यानी कि ऊनी लिबास पहनना या दाढ़ी रखना ये सूफी लोग करते हैं। कुछ लोग इसका ताल्लुक सुफा से जोड़ते हैं कि ये अहले सुफा जो थे, जो हजूर अलैहिस्सलाम जिन सहाबा कराम में से जिनकी खसूसी तरबियत फरमाते थे, उन्हें वहाँ मस्जिद नबी में अपने उस चबूतरे पे रहने का हुक्म देते थे, तो उनको वो लोग जो हजूर अलैहिस्सलाम से दिन रात में सवाल जवाब पूछते थे या वो उनको वो सुबह के वक्त या रात के वक्त या किसी वक्त उनको लेक्चर दिया करते थे। अब ये एक अलहदा बहस है कि वो सारे लेक्चर कहाँ गए, क्योंकि अहादीस की किताबों में वो तमाम लेक्चर गायब हैं। तो एनीवे, तो कोई लोग मतलब है कि इसको सूफ यानी ऊन से जोड़ते हैं कि जो ऊनी लिबास पहनते थे और दाढ़ी रखते थे, कुछ लोग इसको सुफा से जोड़ते हैं। लेकिन अब ये असल बात बड़ी अजीब लगेगी आपको कि ये लफ्ज़ ग्रीक यानी यूनानी जबान के लफ्ज़ सॉफ से है। आपने फेलोसॉफी, फिलोसफी का लफ्ज़ सुना होगा, फेलोसॉफी, सॉफ, सॉफ कहते हैं ग्रीक में दानिश को। फेलोसॉफी, फेलो कहते हैं लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम को ये फिलोसफी कहा गया। और ये लफ्ज सबसे पहले जो हमारे पास दस्तयाब रिकॉर्ड है उसमें मकालात अफलातून, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो नामी किताब में मिलता है, जिसमें सोक्रेटिस के बारे में प्लेटो लिखता है, अफलातून लिख रहा है सुकरात के बारे में कि ही वॉज ए ग्रेट सोफिस्ट, यानी वो एक बहुत बड़ा दानिश्वर आदमी था। अब जब ये हमारा मतलब कि ग्रीक लिटरेचर अरबी में ट्रांसलेट हुआ तो ये लफ्ज़ सूफ, सोफी जो है या सोफिस्ट जो है, दानिशमंदी का लफ्ज़ इधर काबिल और दानिश्वर लोगों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ और यहाँ से फिर एक नई نئے علم کے شاخیں یا شاخ بن گئی، اس کو تصوف کہا گیا. اور حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ بیسیکلی تزکیہ نفس کے علوم کا نام ہے تصوف. یہ تھوڑی سی بات میں نے وضاحت کرنے کے لیے عرض کر دی کہ تصوف کے بارے میں، یعنی وہ علم کی شاخ جس میں ہم اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں. اب لفظ تزکیہ قرآن کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ واتو زکات، زکا کا لغوی مطلب ہے خود کو گرو کرنا، نشو نما دینا، خود کو ڈیولپ کرنا. لیکن ہمارے ہاں اس کو صرف پاکیزگی تک رکھا، حالانکہ اس کے لیے لفظ طہارت کا لفظ، طاہر کا لفظ، شریعت مطہرہ کا لفظ موجود ہے. اور اس لیے تزکیے کا صرف صاف کرنا، صفائی اس کا ایک جزء ہے، لیکن محض صرف صفائی میں لگے رہنا کافی نہیں ہے. خود کو نشو نما دینا جو ہے، یہ ہے اصل میں زکات. تو anyway، حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوع انسانی اور نوع جنات کا تعلق اللہ تعالی سے دو طریقوں پر قائم ہے، دو طرح سے، دو قسم پر. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تجلی کسی بندے کو، چاہے وہ نوع انسانی میں سے ہو یا نوع جنات میں سے ہو، اپنی طرف متوجہ کر لے اور اس بندے کی طرز فکر میں، غور سے سنیے، بندے کی طرز فکر میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات مستحکم ہو جائیں. یعنی ہمارا تھنکنگ پیراڈائم ایسا بن جائے جس میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات ایک مستحکم مقام حاصل کر لیں، اور جب وہ کوئی عمل کرے تو ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر، اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے. ہم لوگ زبان سے، منہ سے اللہ اللہ کی کرلیاں کرتے ہیں، کلیاں نہیں کہا، کرلیاں، کرلانا پنجابی میں کہتا ہے، ایسے ہی چیخیں مارتے رہنا، تکلیف میں، اذیت میں کرلانا ہوتا ہے. تو یہ کرلیاں نہیں کرنی، ہم نے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کا عمل جو ہے، یہ ہے ایک نسبت. یہ انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر ہے. یہ طرز فکر، یہ پہلی دفعہ حضور قلندر بابا اولیاء کے تحریر سے میں نے سمجھا، پڑھا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی کسی مفکر نے یا مصنف نے انبیاء کرام کی طرز فکر کو واضح کیا ہو. یہ حضور قلندر بابا اولیاء کا اعجاز ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ انبیاء کرام کی طرز فکر میں یہ خوبی ہوتی ہے، اور اسی کو اپنانا اس نبی کے امتیوں پہ لازم ہے. یہ ہے اصل فرض ہر امتی پہ، کہ وہ اپنے نبی کی طرز فکر کو اپنائے. اور طرز فکر کیا ہے؟ کہ جب بھی وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو تو اس کو یہ احساس عادتن ہو کہ اس چیز سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے اس سے میرا واسطہ اور تعلق ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر ہے. اب ایک طرز یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اور اللہ کی موجودگی کے بارے میں عملی طور پر یقین رکھتا ہوں. اس یقین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتبہ احسان کا نام دیا. اب یہ لفظ مرتبہ احسان کو بھی آج سن لیجئے. یہ مرتبہ احسان کا مطلب ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اس کی عبادت کرنے کے لیے، یہ عبادت کرنے کے لیے بریکٹ میں، جب تم اللہ کے سامنے ہو تو یہ محسوس کرو کہ وہ، کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کائنک ترا، کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. کم از کم اتنا تو فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ کیفیت جو ہے مرتبہ احسان کہلاتی ہے. اب ذرا جو میں آپ سے طریقہ شیئر کرتا رہتا ہوں، कि अब इस लफ्ज की जरा मैकेनिज्म को समझे, इस लफ्ज के मैकेनिज्म को। ये लफ्ज मर्तबा रुतबे से है, रुतबा डिग्री को कहते हैं, और एहसान का लफ्ज जो है ये हुस्न से है। मोहसिनीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह तो मोहसिनों से प्यार करते, हमने वहां कर दिया एहसान। अब असल में किसी काम को इस दर्जे पे करना कि उसमें हुस्न पैदा हो जाए, इसको कहते हैं एहसान। तो मर्तबा एहसान के आपका अल्लाह से रब्त ऐसा हो कि उसमें ताल्लुक में खूबसूरती हो। देखे ना, हम कई दोस्तों ने मैं आपस में ये मिसाल दी जाती है कि भाई उन दोनों की दोस्ती में बड़ी खूबसूरत दोस्ती है, बहुत प्यारी दोस्ती है, कहते हैं ना। आपको खुद भी याद आ रहा होगा कि बास दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये जुमला बड़े फख्र से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो ताल्लुक में खूबसूरती पैदा होना है, इसका नाम है मर्तबा एहसान। यानी आपका अल्लाह से इतना रब्त हो कि जब आप अल्लाह को सोचें तो आपको महसूस हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। गौर करें, वरना इतना तो महसूस होना ये उसका कमतर दर्जा है कि हमें ये तो फील हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। गौर करें, इस पे बाकायदा मुराकबे करवाए जाते हैं इस मर्तबा एहसान के। नमाज में यकसुई के लिए ये बड़ा मुजरब और बड़ा आजमूदा टोटका है कि आप एक 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके मुसल्ले पे बैठ जाएं और ये तसव्वुर जमाएं कि मुझे अल्लाह मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है, वो अल्लाह जो 70 माओ से ज्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता है, इतनी प्यार भरी निगाहों से मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा रब मुझ पे निगरान है, मुझे देख रहा है। तो ये कहलाती है कैफियत मर्तबा एहसान, यानी अल्लाह ताला की मौजूदगी के बारे में अमली तौर पर यकीन रखता, और इस यकीन को हजूर अलैहिस्सलाम ने मर्तबा एहसान का नाम दिया है। ये बात के सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह के जमाने में रूहानियत के ऊपर कोई खसूसी इल्म मुरतब नहीं हुआ। अब इसकी वजह यह है कि सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजूर अलैहिस्सलाम पर मर मिटने और फिदा होने वाले सहाबाए कराम की अरवाह की अरवाह, सहाबाए कराम की रूहें हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से रंगीन थी। उनके जहन को मुकम्मल यकसुई किस बात से थी कि वो हजूर अलैहिस्सलाम की बातों में, हजूर अलैहिस्सलाम के अमल में, हजूर अलैहिस्सलाम के उठने बैठने और हजूर के नूरानी चेहरे पर गौर फिक्र करते रहते थे। उनकी बातों में, उनके अमल पे, उनके उठने बैठने पे, उनके नूरानी चेहरे पे गौर फिक्र किया करते थे। ये थी शान सहाबा कराम की। इस गौर फिक्र से हजूर अलैहिस्सलाम के करीब रहने वाले हजरात की रूहानी प्यास बुझती रहती थी। सहाबा कराम को हजूर के अकवाल में भी बहुत ज्यादा शगफ था और हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अकदस और हजूर की गुफ्तार में इनहामात की वजह से हजूर अलैहिस्सलाम के हर हर कॉल, हर हर अमल की सही सही अदबियत और सही सही मफहूम पूरी गहराइयों के साथ उनके ऊपर वाज़े होता रहता था। निस्बत ये थी कि उनकी कही हर बात और वो जो भी अमल करते थे उसकी सही अदबियत, अदबियत ये मानवियत से आगे की बात है, और फिर सही मफहूम यानी कि कोई बात किस मफहूम में वो कह रहे हैं वो पूरी गहराइयों के साथ उनके ऊपर वाज़े होती रहती थी। अहादीस पढ़ने के बाद احادیث کو سننے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھنے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے انوار سے وہ لوگ پورا پورا استفادہ کرتے تھے. اس طرح ان کی روح کے اندر انوار کے تمثلات، ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے ذخیرہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. یہ راز بتا دیا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدسی الفاظ اور حضور کے نورانی کردار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ ذہن سے بغیر کسی کوشش کے روشناس تھے، روشناس تھے. وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. حضور قلندر باب اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے عالم بالا کی سیر کے مواقع حاصل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی روح انسانی میں، ان کے لطیفہ روحی اور سری میں قرآن پاک کے انوار اور احادیث کے انوار موجود ہیں، اور انوار کا تقدس اور اس کی نورانی لہریں صحابہ کرام کی ارواح میں اس طرح موجود ہیں کہ ان کی روحیں نور سے لبریز ہیں. اس نور سے، یعنی نور نبوت سے. حضور قلندر باب اولیاء فرماتے ہیں، اس دور میں روحانی قدروں کا نہ ہونا اور روحانی علوم کا تفصیلی تذکرہ نہ ہونا، اسی وجہ سے صحابہ کرام کے بعد زمانہ جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واصل بحق ہو جانے کے بعد دور ہوتا چلا گیا، اسی مناسبت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے انوار سے دور ہوتے چلے گئے. صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد کی نسل، جنہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا انہیں تابعین کہتے ہیں، اور پھر جنہوں نے ان تابعین سے سیکھا انہیں تبع تابعین کے کہتے ہیں. تو تبع تابعین کے بعد چار نسلیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین اور چوتھی تبع تابعین. تو یہ چار نسلیں تقریباً لگ بھگ 100 سال کے بعد لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کے انوار اور احادیث کے انوار معدوم ہونے لگے. اس دور میں ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی طرح کا تعلق کے خاطر رکھتے تھے، اور جن لوگوں کی روحیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز تھیں، انہوں نے تشنگی محسوس کی اور یہ محسوس کیا کہ اگر روحانی علوم کے قوانین، قاعدے اور ضابطے جو روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئے ہیں، ان کو عام نہ کیا گیا تو امت مسلمہ میں بہت بڑا خلا واقع ہو جائے گا. لہذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کو اپنی روح میں ذخیرہ کرنے کے بعد، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کیے، اور پھر ضابطے اور قاعدے بنائے. یہ ضابطے اور قاعدے علمی اعتبار سے بنائے گئے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہر شخص یہ علم حاصل کر سکے. یہ بنیاد بنی تمام 200 کے قریب روحانی سلاسل ہیں. یہ بات وجہ بنی 200 روحانی سلاسل کی موجودگی کی. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے اپنی روح کو لبریز کرے، اور ان روحانی قدروں سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے. چنانچہ شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مثلا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ، ایسے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے علمی حیثیت میں اللہ کے ان اسماء اور قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا جن کے ورد سے ذہن انسانی میں زیادہ سے زیادہ نورانی ذخیرہ ہوتا ہے، یعنی انوارات کا ذخیرہ ہو جاتا ہے. تو شیخ حسن بصری کے زمانے تک یہ چیزیں نہیں ملتی. یہ بات تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام واعظین کو واعظ کرنے سے منع کر دیا تھا. صرف ایک ہستی شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایسی تھی جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوری میں غلط پڑ گیا ایک ہستی شیخ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھی جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے واعظ کرنے کی اجازت تھی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسا دور آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے متعلق انوار و تجلیات لوگوں کے ذہن سے دور ہونے لگے اور اللہ کی صفات کو جاننے میں وہ انہماک نہیں رہا جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. لہذا علماء باطن اولیاء اللہ نے اللہ کی ذات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کو سمجھنے کے لیے طرز فکر کی قدریں قائم کیں. اس طرز فکر کو حاصل کرنے کے لیے اس طرز فکر کو حاصل کرنے کے لیے جو قاعدے اور ضابطے متعین کیے گئے ان کا اصطلاحی نام نسبت علمیہ ہے. یہاں رک جاتے ہیں. کل تو نہیں پرسوں انشاءاللہ پھر آگے قرب نوافل اور قرب فرائض والا عنوان پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ روحانی علوم کس طرح سے منتقل ہو سکتے ہیں، ان کی درجہ بندی کیسے ہے. اس چیپٹر میں یہ بات اس کی پوری ہسٹری سامنے آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو حاصل کرنے کا نام ہے تصوف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر سے خود کو آراستہ کر کے اللہ کو سمجھنا یہ ہے روحانیت. وما علینا الا البلاغ.